ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज विशेष दिन है, दो फेस्टिवल्स है, एक है श्री विश्वरूप महा महोत्सव, दूसरा है श्रील प्रभुपाद ने आज के दिन संन्यास आश्रम को स्वीकार किया था, तो इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे और फिर हम भगवान का जो नाम और महिमा है उस पर चर्चा करेंगे कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी वर्ल्ड होलीनेस वीक चल रहा है। तो विश्वरूप का मतलब ये नहीं है कि भगवान ने अपना विश्वरूप दिखा दिया, तो ये विश्वरूप कौन से हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे उनके प्राकट्य के पूर्व सची माता और जगन्नाथ मिश्र को पहले पुत्र प्राप्त हुए थे, कई कन्याओं के बाद लगभग 8 या 9 कन्याएं जन्मे थे, जन्म लेते ही उनका शरीर छोड़ा था, उसके बाद विश्वरूप का जन्म हुआ जो वास्तव में बलराम से अभिन्न है या मूल संकर्षण है। तो ऐसे विश्वरूप जो इनके पहले पुत्र थे और उसके बाद दूसरे पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम था विश्वंभर। चैतन्य महाप्रभु का मूल ओरिजिनल नाम ये निमाई, उनका नाम निकनेम था, निकनेम होता है ना वैसे ही, नित्यानंद प्रभु का निकनेम क्या है? निताय। तो वैसे इनका ओरिजिनल मूल नाम क्या है चैतन्य महाप्रभु का? विश्वंभर। विश्व के जो पालन करने वाले हैं उसको विश्वंभर कहते हैं। तो जो विश्वरूप है ये बहुत साधु प्रवृत्ति के थे और शुरुआत से ही उनका जो मनोवृत्ति है वो भगवान और वैष्णव में लगी रहती थी। ऐसा एक भी दिन और ऐसा क्षण नहीं था जब विश्वरूप वैष्णव के संग में नहीं रहते हो। हमेशा किताब उनके हाथ में हुआ करती थी, जहां भी वो चल रहे हो किसी से बात कर रहे हो तो किताब हमेशा हाथ में रहती थी, शास्त्रों को पढ़ा करते थे, शास्त्रों पर चर्चा करते थे और वैष्णव के संग में कृष्ण कथा का वर्णन और श्रवण करते थे। विशेष रूप से जो वैष्णव है अद्वैत आचार्य इनके ग्रुप में वो मिलित रहा करते थे विश्वरूप। तो एक बार सची माता और जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि हमारा जो बालक है अभी बहुत बड़ा हो गया है, अभी इसकी आयु विवाह की आयु हो गई है, अभी इसके लिए क्या ढूंढना चाहिए? एक सुंदर कन्या को ढूंढना चाहिए विवाह के लिए। तो सची माता जगन्नाथ मिश्र ये आपस में बात कर रहे थे, रूम के अंदर विश्वरूप ने बाहर से सुन लिया, मेरे शादी की चर्चा हो रही है, हम तो आनंदित हो जाएंगे। और यहाँ विश्वरूप की शादी की चर्चा जब उन्होंने सुनी तो विश्वरूप को बहुत ठेंच पहुंची कि मैं तो विवाह नहीं करूंगा। तो उसी दिन उन्होंने क्या किया, भाग निकल पड़े घर से और वाराणसी में एक भारती हाँ एक सन्यासी थे, मैं नाम भूल गया, महाप्रभु ने तो केशव भारती से लिया, उनके बड़े भाई ने भी किसी भारती से ही संन्यास लिया है वाराणसी काशी में जाकर, मैं नाम भूल गया। तो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उनका नाम पड़ा शंकरारण्य। कई स्थान में वर्णन आता है कि यही शंकरारण्य आए नित्यानंद प्रभु को लेने के लिए। हाँ तो संन्यास ग्रहण किया, जैसे संन्यास पता चला माता पिता को मेरे पुत्र ने संन्यास ग्रहण किया है, सची माता और जगन्नाथ मिश्र बहुत दुखी हो गए, रोने लगे, नवदीप में हाहाकार मच गया। किसी के घर में कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो लोग ऐसे दुखी हो जाते हैं कि जैसे शरीर त्याग दिया। मैं जब घर से भाग के आया था दिल्ली, तो एक साल के बाद गया, पैंट शर्ट में आया और सैफ्रॉन में गया, तो पूरा गांव मुझे देखने के लिए इकट्ठा हो गया और कई लोग रो रहे थे जोर जोर से, माता पिता कुछ रिलेटिव्स। तो ऐसा वातावरण हो गया था कि घर का कोई प्राणी सदस्य ने शरीर छोड़ा हो। तो ऐसे जब सची माता जगन्नाथ मिश्र बहुत दुखी हो गए तो उनको सांत्वना कौन दे सकता है? अभी कोई विद्वान व्यक्ति ही रोए तो उसको सांत्वना देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि विद्वान को सारी चीजें पता है, लेकिन उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, वो जानता है क्या उचित है क्या अनुचित है। तो चैतन्य महाप्रभु जो छोटे से थे निमाए, उन्होंने अपने माता और पिता का हाथ पकड़ा, माँ के सर पर ऐसे हाथ, क्या कहेंगे, हाथ हाथ फेरा है, अच्छा हाथ फेरा, और कहने लगे कि आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, जिस घर का कोई एक व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है उसकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं। और कहा कि आप चिंता मत कीजिए माता पिता, मैं हूं आपकी सेवा के लिए। हाँ उसको संन्यास लिया, बहुत अच्छा हो गया, कुल का उद्धार हो गया, लेकिन आगे चलकर मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी देखभाल करूंगा। तो इस प्रकार से विश्वरूप ने संन्यास लिया था। और फिर कुछ दिन बीते तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु निमाय मूर्छित हो गए और उनके माता पिता को कहा कि मैंने एक सपना देखा है। अभी उन्होंने पूछा क्या सपना देखा है, कहते कि मेरा बड़ा भाई मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी ले जा रहा है और कह रहा है तुम भी संन्यास ग्रहण करो। इस प्रकार से महाप्रभु दिखाना चाह रहे थे आगे आने वाली लीला कि मैं भी क्या करने वाला हूँ, सन्यासी ही बनूंगा। वास्तव में सन्यासी बनना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के समय में हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्लर्क बनना चाहते हैं, पुलिस मैन बनना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा है कि जो सन्यासी बनना चाहता हो? मध्वाचार्य थे, मध्वाचार्य छोटे थे 5 साल के, और उनको क्या हो गया एक दिन उन्होंने कहा मैं तो सन्यासी बनूंगा। 5 साल में घर छोड़ के चले गए। आप सोचो शंकराचार्य ने 9 साल या 5 साल में सन्यास स्वीकार किया था, सन्यास आश्रम। तो सन्यास का एक में उद्देश्य है मुकुंद की सेवा करना। यदि सन्यास आश्रम है, डंडा हाथ में है और वस्त्र भी बड़े सैफ्रॉन है, लेकिन मुकुंद की सेवा में नहीं लगा वो सन्यासी, तो वो सन्यासी नहीं है। हाँ इसलिए सन्यास का परम उद्देश्य है मुकुंद की सेवा करना। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु सन्यास ग्रहण किए और उन्होंने आदर्श स्थापित किया कि सन्यास का परम उद्देश्य क्या है। महाप्रभु ने वो श्लोक बोला अवंती ब्राह्मण का कि मुकुंद की सेवा करूंगा और इस संसार को मैं पार कर जाऊंगा। महाप्रभु रुके नहीं अपने भाई का स्मरण करने में, सन्यास ग्रहण किया, नवद्वीप को छोड़ा, जगन्नाथपुरी पहुंचे। पहुंचे कि नहीं तो एक हफ्ते में वहां बोलने लगे, सर्व भट्टाचार्य को भक्त बना दिया और कहा कि मुझे दक्षिण भारत की यात्रा में जाना है। तो सबने पूछा क्यों जाना चाहते हो दक्षिण भारत की यात्रा में, कहते कि मेरे बड़े भाई को ढूंढने जा रहा हूं। संन्यास लिया और अभी तक उनका कुछ पता नहीं है, उनको मैं मिला नहीं हूं, तो उनको ढूंढूंगा। तो महाप्रभु बहाना बनाने में एक्सपर्ट है, कई सारे उनकी लीलाएं हैं जिसमें वो बहाना बनाते हैं। तो ये निधर भी बहाना बनाया कि भाई को ढूंढने जा रहा हूं, लेकिन उनको प्रचार करना था। हम प्रचार न करने का बहाना ढूंढते हैं, वहां को बहाना ढूंढते कि कैसे सबको हरि नाम दो, कैसे सबको प्रचार करो, कैसे पुस्तकों का वितरण करो। तो महाप्रभु गए वहां, नौ प्रकार से चमत्कार प्रदर्शित करते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं, नौ प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत में लोगों को भक्त बना दिया। किसी को तो जस स्पर्श करने मात्र से, हाँ किसी को तो हरि इनको देखने मात्र से भक्त बन जाते थे, महाप्रभु हाथ ऊपर करे तो भी भक्त बन जाते थे। ऐसे नौ प्रकार का वर्णन कृष्णदास कविराज करते हैं दक्षिण भारत की यात्रा में। और फाइनली वो महाराष्ट्र पहुंचते हैं, जहां पंढरपुर नामक एक स्थान है, जहां भगवान विठल निवास करते हैं। जैसे ओडिशा में जगन्नाथ, राजस्थान में श्रीनाथ, और यूपी में कृष्ण बलराम है, द्वारका में द्वारकाधीश, साउथ में रंगनाथ, तो वैसे महाराष्ट्र में विठल है। तो चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, विठल के सामने बहुत नाचने लगे, गाने लगे, और फिर एक ब्राह्मण के घर गए, तब उनको पता चला कि मेरे जो भ्राता थे विश्वरो, उन्होंने पंढरपुर में क्या किया, अपना शरीर छोड़ा है, समाधि सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो आज का दिन है, विश्वरो ने संन्यास स्वीकारा था, और आज के दिन, बल्कि वो कितने साल पहले, और आज के दिन चैतन्य महाप्रभु श्री प्रभुपाद ने लगभग 450 साल बाद आज के दिन केशव गौड़िया मठ में, हाँ मथुरा में संन्यास ग्रहण किया था। हाँ उनके संन्यास गुरु थे केशव महाराज, गौड़िया मठ जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के डिसाइपल है। तो प्रभुपाद ने तो अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ा, क्योंकि बहुत सारे विपद आए थे, ऐसे वैसे नहीं छोड़ा। वो फैक्ट्री जल गई, पत्नी कॉपरेट नहीं कर रही थी, बच्चे सुन नहीं रहे थे, धन चला गया, बहुत कुछ हो रहा था। तो प्रभुपाद ने याद किया कि भगवान की अनुकंपा यही है, हरि से तद धनक्षणे, भगवान की कृपा हो रही है इसका मतलब है धन कम हो रहा हूं, धन बढ़ रहा है इसका मतलब भगवान की कृपा घट रही है। तो प्रभुपाद ने भगवान की कृपा को देखा जीवन में, और पत्नी को भी कहा कि थोड़ा सा भक्त बनो, उन्होंने कहा मुश्किल है, मैंने भक्त बन सकती। तो प्रभुपाद झांसी गए, पूरा जोर लगाया, संन्यास आश्रम के पहले जो भी किया वो उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं आ रहा था। इसलिए भक्ति सिद्धार्थ महाराज प्रभुपाद लखनऊ में थे, तब एक बार सपने में आए और कहा अभय संन्यास ग्रहण करो। फिर संन्यास के विचार आते ही शरीर कांपने लगा प्रभुपाद का, संन्यास इतना इजी कार्य नहीं है, बोलने में तो बहुत अच्छा है, हम सोचते हैं संन्यासी तो महाप्रसाद खाता है और बड़ा आदर सम्मान प्राप्त करता है, ट्रैवल करता है, दिखने में बड़ा सरल है। सबसे कठिन आश्रम कौन सा है, संन्यास, उसमें बहुत सारे तपस्याएं हैं। तो प्रभुपाद फिर झांसी में भी फेल हो गए, वहां से वृंदावन आ गए, वृंदावन में राधा दामोदर टेम्पल में रहने लगे। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज गुरु पीछा नहीं छोड़ते, हमेशा लगे रहते हैं। प्रभुपाद ने कहा मेरे आध्यात्मिक गुरु मेरे साथ हैं, वो मुझे सदैव गाइड करते हैं, ऐसा एक क्षण नहीं था जब मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से दूर हुआ हूं, सदैव मेरे साथ थे वो। तो फिर भक्ति सिद्धांत महाराज दूसरी बार भी सपने में आ गए, वृंदावन में भी कहा अभय अभी संन्यास ग्रहण करो। वो बहुत डरने लगे कि संन्यास ये ठीक है, वानप्रस्थ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर एक दिन वो अपने गुरु भाई से मिलने गए मथुरा, केशव महाराज सन्यासी थे। उन्होंने कहा अभय बाबू कुछ करना है ना प्रचार आदि, कुछ ठोस कार्य करना है तो संन्यास ग्रहण करो। तो उन्होंने सोचा मेरे गुरु इनके मुख से बोल रहे हैं, इनके मुख से, मेरे गुरु भाई के मुख से। तो उन्होंने सोचा कि अभी संन्यास ग्रहण करना पड़ा। जैसे प्रभुपाद बहुत बीमार थे, रात को हार्ट अटैक से आ गया था उनको अमेरिका में, नए नए जब यहाँ से गए तो शिष्यों ने कोई डॉक्टर ढूंढने के लिए गए रात्रि में, कोई डॉक्टर नहीं मिला, एक डॉक्टर मिला जो पूरा पियकड़ था और पूरा ठोस के बैठा हुआ था अपने चेयर में। प्रभुपाद उसको उठा के ले आए, वो आके प्रभुपाद को देखा, देखने मात्र से कहा इनकी बीमारी का इलाज है मॉर्निंग वॉक करना, सुबह सुबह सैर करना, चलना। तो प्रभुपाद ने सोचा कृष्ण इस डॉक्टर के मुख से बोल रहे हैं, शराबी है लेकिन कृष्ण मुझे उपदेश दे रहे। कई बार आप सोचते हैं प्रवचन में जाओ कि नहीं जाओ, अरे वो नए भक्त प्रवचन दे रहे या कोई और डिवोटी, कितना सुनता रहता हूँ उनकी वही चीजें बोलेंगे, या उनसे अधिक मैं जानता हूँ, शास्त्रों को मैंने उनसे अधिक पढ़ा है, विद्वान हूँ, संस्कृत का ज्ञाता हूँ, लेकिन वास्तव में हर प्रवचन में आप देखेंगे कि हर इंडिविजुअल डिवोटी के लिए कुछ ना कुछ छोटी सी चीज होती है जो उसके हृदय को स्पर्श करती है। हाँ, ये हमारा अनुभव है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने भी सोचा कि इस डॉक्टर के मुख से कौन बोल रहे हैं, कृष्ण ही बोल रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं उनकी सेवा के लिए। तो प्रभुपाद उसको स्वीकारते हैं और फिर प्रभुपाद तैयार हो जाते हैं कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है। तो उस समय एक दिन फिर आज का दिन आता है, प्रभुपाद वृंदावन से अपने कपड़े वगैरह सब खरीद लेते हैं और संन्यास के लिए मथुरा में पहुंचते हैं। तो थोड़े से डिवोटी इकट्ठा हो गए थे, 50-40 जो भी उस मठ में थे, और फिर उनके साथ और एक भक्त संन्यास ले रहे थे। जब संन्यास दिया तो उनका नामकरण हुआ अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, श्रील प्रभुपाद नहीं, ये तो भक्तों ने दिया हुआ नाम है। तो जब ये नामकरण हुआ, दंडा स्वीकार किया, अभी अभय बाबू क्या बने थे, अभी सन्यासी बने थे, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो जब सन्यास की सजीव सन्यास दीक्षा होती है, सन्यास दीक्षा में मंत्र मिलता है, एक विशेष मंत्र दिया जाता है सन्यासी को, गोपी भाव मंत्र जो उसको उच्चारण करना होता है। तो ऐसे जब सन्यास स्वीकारा तो सन्यासी का कर्तव्य है उस समय कि अपने सन्यासी गुरु को क्या करना, गुणगान करना। तो प्रभुपाद की बारी आई, अपने सन्यास गुरु को गुरु के बारे में बोलना, कुछ शब्द बोलना। तो माइक तो था कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन खड़े हो गए, देखा कि सारे हैं, क्योंकि प्रभुपाद का विजन बहुत क्लियर है, उनको पता है मुझे कहाँ जाना है प्रचार करने के लिए, अमेरिका में, और मेरा जो ऑडियंस है वो इंग्लिश समझने वाला ऑडियंस है। अभी सन्यास होते ही पहला मौका मिला बोलने का, डंडा हाथ में लेके खड़े हो गए अपने आध्यात्मिक सन्यास गुरु के साथ ही, और खड़े होकर उन्होंने सोचा नहीं कि यहाँ अंग्रेजी किसको समझ में आता है, यानी मथुरा के गांव में किसको अंग्रेजी आता होगा, जो मठ में रहने वाले सीधे साधे ब्रह्मचारी जन गांव से आए हुए। लेकिन प्रभुपाद खड़े हो गए और उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया, ना बंगाली में बोले, ना उड़िया में बोले, ना हिंदी में बोले, कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो सारे लोग समझ गए अभय बाबू कुछ अलग ही व्यक्ति है, ये कुछ नया करेगा। तो प्रभुपाद फिक्स थे, बहुत उनका क्लियर विजन था कि मुझे आध्यात्मिक गुरु के आदेश के अनुसार कहां प्रचार करना है, पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में। प्रभुपाद की विशेषता थी। तो प्रभुपाद जब यदि संन्यास नहीं लेते हैं तो हम सब यहाँ नहीं होते। तो संन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, संन्यास लेने के लिए हमें क्या होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो संन्यास लेने के लिए उत्साहित होना चाहिए, लेकिन वास्तव में हर कोई संन्यासी बन सकता है यदि संन्यासी का स्पिरिट अपने हृदय में वो रखे। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने संन्यास स्वीकार किया और संन्यास का उद्देश्य है मुकुंद की सेवा प्रचार के द्वारा। फिर प्रभुपाद ने अपने आने वाले जब डिसाइपल्स बने तो वो डिसाइपल्स अभी 20-21 साल के थे, उनको संन्यास दे दिया। अभी तक हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ था, जयपतक महाराज 21 साल के थे, कितने 21 साल के, डंडा पकड़ा दिया उनको सन्यासी जय पता का। तुम्हारे पता का हमेशा जय हो। हम अभी जब कलकत्ता गए थे बीच में एक महीना पहले, जो सेलिब्रेशन था 50 साल जब हो रहे थे, तो अचानक ही पहुंच गए वहां कलकत्ता, मध्यरात्रि यहां से निकल पड़े। तो जब वहां पहुंचे तो बहुत उत्साह था कि इतने सारे भक्तों को मिलने का मौका मिलेगा, और पूरे 108 नहीं उससे ज्यादा देशों से भक्त आए थे, और लगभग कितने हजार लोग उस ऑडिटोरियम में थे। तो वहां राधानाथ महाराज के एक डिसाइपल थे, वो बोल रहे थे, उनको जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने जयपतक महाराज के बारे में बोला। उन्होंने कहा कि वो बहुत धनाढ्य परिवार से हैं, अपार अपार इंडस्ट्रीज के ओनर हैं। तो वो बिहार या किसी स्थान में उनका घर है। तो उन्होंने कहा कि एक दिन श्रील प्रभुपाद हमारे घर में आए, और मैं थोड़ा युवक था, मेरे पिता ने उनको इनवाइट किया था, पूरा टीम उनका रहा हमारे घर में। कहते मैं मायावादी था, नास्तिक था, और ये प्रभुपाद आए, वो प्रभुपाद और उनके शिष्य जब कीर्तन करते थे तो मुझे अच्छा लगता था, और फिर प्रभुपाद के साथ एक जयपतक स्वामी भी थे, और फिर प्रभुपाद जब बोलने लगे उनके पिता को कहा देखो ये जो जयपतक है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु का पार्षद है, ऐसे बोला उन्होंने। हाँ, प्रभुपाद ने कहा जयपता का प्रभुपाद का पार्षद है, और वहां जन्म लेकर चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन फैलाने के लिए प्रकट हुआ है, और जो हजारों हजारों शिष्य स्वीकार करेगा। प्रभुपाद ने बोल दिया था उनके बारे में, कहा इसलिए मैंने इनको संन्यास दिया है 21 साल की आयु में। तो इस प्रकार से हमारे संप्रदाय में संन्यास आश्रम एग्जिस्ट नहीं करता था। मध्वाचार्य के संप्रदाय से हम हैं, तो माधवेंद्रपुरी तक संन्यास लिया है सबने, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए, महाप्रभु के बाद किसी ने संन्यास नहीं लिया, उसके बाद गोस्वामी ने भी संन्यास नहीं लिया था, संन्यास से ऊपर की दीक्षा ली थी, ऐसे नहीं कहा जा सकता संन्यास के ऊपर की। लेकिन चार वर्ण और आश्रमों में बाबा जी नहीं आते, बाबा जी वेश उन्होंने स्वीकारा था गोस्वामियों ने, और ये लगभग चलता रहा भक्ति विनोद ठाकुर तक। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बाबा जी वेश लिया, अपना सारा ग्रह त्याग आदि सब त्याग दिया, लेकिन फिर भक्ति सिद्धांत महाराज प्रकट हो गए। उन्होंने कही ऐसे नहीं चलेगा, प्रचार होगा तो कैसे होगा, संन्यास आश्रम के द्वारा। मैं भी उनके फादर ने बाबा जी वेश लिया था, उनके गुरु भी बाबा जी वेश में थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज विशेष योगदान प्रदान करने के लिए अवतरित हुए थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने गौर पूर्णिमा के दिन उनके गुरु वगैरह जो अप्रकट हुए थे, उन्होंने एक तो व्रत लिया था, जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने, और बल्कि अपने गुरु से वो बिल्कुल ही विभिन्न थे। एक बार वो नाव से जा रहे थे गंगा में पार करके, तब किसी व्यक्ति ने पूछा भक्ति सिद्धांत विमला प्रसाद उनका नाम था, देखो तुम में और तुम्हारे गुरु में कुछ बहुत सारी भिन्नता नजर आती है, एक जैसा स्टाइल नहीं है। उन्होंने कहा कहते वो तो एक जगह बैठकर हरि नाम लेते रहते हैं, तुम घूम घूम के प्रचार करते हो। उन्होंने कहा वो इन्वर्टर का बैटरी है, वो वहां से सारा सप्लाई किसको देते हैं, मुझे, जिसके द्वारा मेरा बल्ब प्रकाशित रहता है, सब स्थानों में जाता हूं। तो ऐसा प्रगाढ़ श्रद्धा था गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के प्रति, और फिर जब वो भी अप्रकट हुए तो उन्होंने सोचा प्रचार के पूर्व मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे प्रभुपाद लीलावृत में एक अध्याय आता है पूर्व तैयारी, प्रभुपाद के अमेरिका जाने से पूर्व वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने शत कोटि नाम यज्ञ किया। कितना कोटि नाम यज्ञ, शत मतलब एक अरब नाम, करोड़ के बाद क्या आता है, अरब ही आता है ना। तो वो शत कोटि नाम यज्ञ उन्होंने शुरू किया, और वो भी कहा चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान था नवद्वीप में, उसके सामने ही उन्होंने कुटिया बनाया और कुटिया बनाकर उसमें लगभग 10 साल तक हरि नाम लेते रहे। रोज 3 लाख नाम लिया करते थे, अधिक से अधिक नाम लेते थे और उस कुटिया में 10 साल तक हरि नाम लेते रहे प्रतिदिन, और खुद ही भोजन पकाते थे, कुछ हल्का सा खिचड़ी आदि, और दिन रात क्या उच्चारण करते थे, हरे
कृष्णा कृष्णा कृष्णा,
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो हरे नाम लिया करते थे। जब ये यज्ञ पूरा हो गया 10 इयर्स, रोज 3 लाख नाम साधारण नहीं है, 16 माला ही पता चलता है हमें, 16 माला यज्ञ कितना महत यज्ञ है, उसमें ही हम घायल हो जाते हैं। तो ऐसे भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने जब ये यज्ञ पूरा किया और वो बहुत दुखी हो गए, उन्होंने देखा कि सब आचार्यगण मेरे जीवन से दूर हो गए, अभी मैं एकाकी हो गया। तो एक दिन बहुत रोने लगे दुखी होकर, और तो उस समय एक चैतन्य भागवत का एक पन्ना हवा से उड़ते हुए उनके पास पहुंचता है, ऐसे घुटने के पास लग जाकर बैठे थे वो, और उसमें लिखा हुआ था एक विशेष श्लोक कि क्या करो, चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन का प्रचार करो। तो उनको लगा मैं क्या प्रचार करूं, मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स नहीं है, धन नहीं है, योग्यता नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, कैसे मैं प्रचार करूं। तो उस रात्रि में जब सो गए, सोने के बाद सपना आ गया। हमारे सपने कुछ अद्भुत होते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज के जो सपने हैं, उनको जब सपना आ गया तो उसमें सारे आचार्य परंपरा उसमें खड़ी हो गई सपने में, भक्ति सिद्धांत महाराज के लिए, उनको जगाने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, पंच तत्व, उन्होंने कहा उठो। अभी हम मुंबई गए थे लास्ट वीक मीरा रोड टेम्पल ओपनिंग के लिए, 3-4 दिन पहले। तो जाते जाते एक डिवोटी का मोबाइल, वो पाकिस्तान के प्रभु जी भी हमारे साथ थे, अभी 10 दिन बाहर हाजिर थे, तो मोबाइल उन्होंने रिंग क्या होता है मॉर्निंग उठाने के लिए अलार्म, तो उनका अलार्म बड़ा अद्भुत था। आजकल सारे ब्रह्मचर्य आश्रम में वही अलार्म है, आपने किया है कॉपी, गोपी प्रभु भी थे हमारे साथ, तो वो अलार्म इतना पावरफुल था, हम कई घंटे हंसते रह गए वो अलार्म सुन सुन के। उसमें कौन से महाराज का आवाज है, नवयोगेंद्र महाराज का आवाज है, इतना खतरनाक। वो जस्ट हाफ मिनट के लिए बोल रहे हैं उठो जागो, कब तक सोते रहेगा। मैं बोलता हूं उनको फॉरवर्ड करने के लिए, और वो सारे जो में भी हम थे तो वहां सारे ब्रह्मचारी के मोबाइल में वही अलार्म, सुबह मंगल आरती से पहले वो अलार्म ऐसे लगता है कि कोई डंडा लेकर आ गया है उठाने के लिए। हाँ, दिल्ली टेम्पल में भी अभी बहुत सारे ब्रह्मचारी इसके मोबाइल में वो अलार्म है, तो इतना भयानक है कि आप सो नहीं सकते मंगल आरती में। इंग्लिश में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते, कहते जीव जागो, और बहुत डांटते हुए बोलते हैं, ऐसे लगता है कि आश्रम में महाराज आ गए उठाने के लिए, इतना क्लियर कठोर ध्वनि है। तो वैसे ही यहाँ आए आचार्य गण आए और भक्ति सिद्धार्थ महाराज को कहा कि तुम्हें चिंता करने का कोई कारण नहीं है, बस निकलो बाहर, हम कॉन्टैक्ट्स तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट देंगे, धन देंगे, सब सुविधा, आप पहले क्या करो बाहर निकलो प्रचार के लिए। भक्ति सिद्धार्थ महाराज सोचने लगे वाह अभी मुझे निकलना होगा, तो उन्होंने शुरू कर दिया आंदोलन। उन्होंने गौर कृष्ण, उनके गुरु महाराज कलकत्ता का नाम माया नगरी रखा था, कहते मैं माया नगरी में कभी नहीं जाऊंगा, तो गए नहीं, उनके डिसाइपल भक्ति सिद्धार्थ महाराज को भेजा करते थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धार्थ महाराज जब तैयार हो गए और उन्होंने सोचा कि प्रचार करने के लिए एक मिशन संस्था स्थापित करनी होगी, तो गौड़िया भट्ट उन्होंने स्थापित किया, और उन्होंने सोचा प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकारा था, मुझे भी सन्यास आश्रम स्वीकारना पड़ेगा। देखा कौन क्वालिफाइड है मुझे सन्यास देने के लिए, कोई योग्य व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। गौर पूर्णिमा के दिन अपने आध्यात्मिक गुरु का फोटो सामने रखा और उनसे क्या किया, भक्ति सिद्धांत महाराज ने सन्यास ले लिया और खुद का नाम खुद ही कर लिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर त्रिदंडी गोस्वामी। हाँ ऐसे है, इसलिए उनको सिंह गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंह गुरु, लायन गुरु है वो। उन्होंने ऐसे नहीं कि उसका आधार कुछ नहीं था, शास्त्रों में आधार है, बल्कि वो फॉलो करते थे श्रीपद रामानुजाचार्य को, हाँ जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। अधिकतर जो हमारे संप्रदाय में चीजें लागू हुई है, दीक्षा की प्रोसेस आदि, संन्यास, बहुत सारी चीजें, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रीरंगम गए, वहां से ये सारी चीजें उन्होंने देखी सीखी और आपने इस आंदोलन में लागू की। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज संन्यास स्वीकार करते और तब से इस संप्रदाय में ये संन्यास शुरू हो गए। फिर प्रभुपाद आदि, और उससे पहले महाप्रभु के आने वाले कोई सेफ्रॉन कपड़े नहीं पहनते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ब्रह्मचारी के लिए भी सेफ्रॉन धारण करवा दिया, बल्कि ब्रह्मचारी के लिए सेफ्रॉन नहीं है, उनके लिए सफेद वस्त्र है, लेकिन प्रचार के लिए, प्रचार हेतु उन्होंने, क्योंकि भारत में इसका एक सम्मान आदि है, तो सम्मान का लाभ उठाने के लिए क्या किया, ये वस्त्र सबको पहना दिए, जिसके द्वारा हाँ प्रचार हो। इस प्रकार से आज श्रील प्रभुपाद ने संन्यास स्वीकारा था और आगे भी अपने अनुयायियों को संन्यास आश्रम में दीक्षित किया। पहले उनके सन्यासी थे कीर्तनानंद स्वामी, कित, उनका नाम था कित। प्रभुपाद ने उनको पूरा कुकिंग का मास्टर बना दिया, कुकिंग सिखा कर। हाँ जब वो छोक लगाने का समय होता था, प्रसाद से पूर्व सारे भक्त इकट्ठा होते थे और जब दाल का छोक लगता था उसका मतलब प्रसाद अब तैयार है। एक मंदिर में हम गए थे कुछ महीने पहले, वहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में घंटा लगाया हुआ है। स्कूल में जब ब्रेक, क्या कहते हैं, लंच ब्रेक होता है तो घंटी बजती है ना टांग टांग टांग, वैसे है उस ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रसाद का टाइम हो गया, एक भक्त की सेवा है, वो जाके घंटा बजाता रहता है। सब जो भी जहाँ हो, चाहे कोई सो रहा हो, कोई कहाँ हो, सब घंटे की आवाज सुन के प्रसाद हॉल में पहुंचते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद के समय छोक की आवाज सुन के सारे लोग, सारे भक्त सेकंड एवेन्यू जो न्यूयॉर्क का स्टोर फ्रंट था वहां पहुंच जाते थे। तो प्रभुपाद जब इनको वृंदावन लाए और देखा कि कुकिंग करने में बड़ा मास्टर है, तो प्रभुपाद पहले उनको किट की जगह किचनानंद कहते थे। किचन में जो आनंद लेता है, जैसे एक भक्त थे जब उन्होंने ज्वाइन किया ब्रह्मचर्य आश्रम, वो बड़े पतले से थे, लेकिन उनको एक प्रार्थना बहुत अच्छी लगती थी, कौन सी, महाप्रसादे गोविंदे। टेम्पल कमांडर उनको सेवाएं देता था, तो वो चाहे झाड़ू लगा रहे हो, बाथरूम सफाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सदैव कीर्तनीय सदा आ रही उनकी जीवा से, कौन सा मंत्र निकलता था, महाप्रसादे गोविंदे। और उनको हलवा बहुत अच्छा लगता था, तो महाप्रसाद बोलते रहते थे पूरे दिन और हलवा आदि खाते थे। तो ये विदेशों की सत्य घटना है, वो डिवोटी पतले से थे सिकुड़े हुए, लेकिन धीरे धीरे प्रसाद का जो प्रभाव है उनके शरीर में दिखने लगा, साइज इतनी बढ़ गई कि जिस रूम में वो रहा करते थे उसमें से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया था। फिर भक्तों ने रूम का दरवाजा का साइज क्या कर दिया, बढ़ा दिया। हाँ तो हमें कोई एक चीज को पकड़ लेना चाहिए कृष्ण भावना में, उसी में हमारा जो जीवन क्या है, सफल है। चाहे कीर्तन के प्रति आकर्षण, शास्त्रों के प्रति आकर्षण, हरि नाम के प्रति आकर्षण, कुछ भी आकर्षण नहीं है तो प्रसाद के प्रति जीवन सफल है, क्योंकि कृष्ण में और उनके प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से ये किचनानंद उनको प्रभुपाद यहाँ लेके आ गए। कित नाम था, राधा दामोदर मंदिर में उनको पहला संन्यास दिया, प्रभुपाद के फर्स्ट अमेरिकन शिष्य कीर्तनानंद स्वामी, और जिन्होंने बहुत सारी सेवाएं की। तो सन्यासी का असली धन है भगवान का पवित्र नाम। इसलिए जो व्यासदेव, पुराणों में वर्णन आता है कि व्यासदेव जब एक बार स्नान करने गए एक नदी में, और सारे ऋषि मुनि एक कोने में इकट्ठा हो गए थे जंगल में, पुराण वो चर्चा कर रहे थे कि कौन सा ऐसा कार्य करने से कलियुगा में, थोड़ा सा कार्य करने से, अल्प कार्य करने से, कस्मिन काले अल्प को धर्मो ददाति सु महत् फलम, क्या ऐसी चीज है जो अल्प करने मात्र से कलियुगा में महत् फल दे सकती है। ये सारे मुनिगण आपस में चर्चा करने लगे तो उनको कुछ उत्तर नहीं मिल रहा था। तो सबके उत्तर किसके पास है? व्यासदेव के पास। व्यासदेव के पास ही सारे मुनिगण जाते हैं, और व्यासदेव तो कमाल के डिवोटी हैं। व्यासदेव स्नान कर रहे थे, लेकिन स्नान करते करते जोर जोर से चिल्ला रहे थे। क्या बोल रहे थे? कलियुगा में शूद्र ही श्रेष्ठ है, कलियुगा में स्त्रियां ही श्रेष्ठ है। अभी सारे मुनिगण पहुंच गए उस नदी के तट पर, देखा क्या हो गया। अभी तो ठीक ही थे जब हम कल मिले थे व्यासदेव को, अभी अचानक क्या हो गया? हाँ, तो शूद्र कैसे श्रेष्ठ हो सकती है, स्त्रियां कैसे श्रेष्ठ हो सकती है। बल्कि स्वयं ही उन्होंने भागवत में लिखा है, स्त्रिया शूद्र द्विज वंदना नहा श्रुति गोचरा। इनको, इनके दिमागों में श्रुति शास्त्र जाते नहीं है, स्त्रियों के और शूद्रों के, खुद ही लिख दिया। फिर गीता में भी वर्णित कर दिया भगवान के वाणी को, क्या है 90 अध्याय का श्लोक, श्लोक में वो कहते हैं कृष्ण कि जो शूद्र और स्त्रियां हैं वो भी शुद्ध हो जाती हैं। तो ऐसे जब उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन यहाँ आज क्या हो गया, वो चिल्ला रहे हैं कि श्रेष्ठ है, महान है। तो फिर ये सब लोग आए और उन्होंने कहा, आप हमें भ्रमित कर रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, सही सही बताओ। तो व्यास देव बोलने लगे, यत्रते दशभिर वर्षे त्रेतायाम हयनेन तद् द्वापारे तत्समासेन हि अवरात्रेन तत् कलौ। उन्होंने कहा, कलयुग के स्त्रिया शूद्र, वैसे कलयुग में सारे क्या है, शूद्र है, कलो शूद्र संभव। उन्होंने कहा कि सत्ययुग में 10,000 साल बिताते थे तपस्या करने से, वो फल प्राप्त होता था, वही फल प्राप्त होता है त्रेता में एक वर्ष तपस्या करने से, और द्वापर में एक महीना, और कलियुगा में उन्होंने कहा हि अवरात्रेन तत् कलौ। कलियुगा में केवल एक दिन या एक रात्रि की तपस्या काफी है भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो चीज क्या है, यदि कलियुगा में व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम को गंभीरता से पकड़ लेता है तो उतना काफी है भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो व्यासदेव इस चीज को बताते हैं। तो वैसे देखा जाए, सारे शास्त्रों को यदि पढ़ते हैं तो जैसे हम कपड़े धोने के बाद निचोड़ते हैं ना, तो निचोड़ने से क्या गिरता है नीचे, पानी। वैसे सारे शास्त्रों को निचोड़ो तो क्या गिरेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी कारण से आचार्यगण, चाहे वो सूफी संत हो नानक, या फिर मुस्लिम हो या फिर हिंदू धर्म के कई सारे पंडितगण हो या सारे शास्त्र हो, वो सारे एक ही चीज का गुणगान करते हैं, और वो है भगवान का जो पवित्र नाम है। चाहे संत हो, पैगंबर हो, नानक हो, जीसस हो, कुछ भी हो, वो भगवत नाम की महिमा का वर्णन करते हैं सारे जो धर्म ग्रंथ हैं। तो लेकिन ये जो कलियुग है उसकी तुलना एक काल सर्प से की गई है, एक राक्षस से की गई है, जो सारे लोगों को निगलते जा रहा है, दिल भ्रमित कर रहा है। लेकिन ऐसे कलियुगा में भी सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान का पवित्र नाम। में भी कलियुगा की बहुत कमियां हो सकती है, इसलिए परीक्षित महाराज ने बहुत कमियां देखी भी, लेकिन एक गुण जरूर देखा। हाँ, हमें क्या नजर आता है किसी में, बहुत सारे अवगुण ही नजर आते हैं, कमियां ही नजर आती हैं, गुण वैसे ही नजर नहीं आता। हाँ, कोई गुण हो तो भी उसमें हम लगे रहते कि कैसे उसको अवगुण में परिवर्तित किया जाए। उसमें भी कुछ लोग होते हैं ना जिनको सहन नहीं होता कि इसमें गुण हो, इतनी ईर्ष्या द्वेष हृदय में होता है तो कभी प्रशंसा नहीं करेंगे। तो वैसे ही हाँ, ये जो कलयुग है, यदि कोई पूछे कि कलयुग कब शुरू हो गया, हम गिरने लगेंगे। हाँ, सत्य के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के भी इतने दिन या मंथ आदि हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कलयुग की शुरुआत कब हो गई, यस्मिन दिने हरिर यातो दिवं संतेच मेदिना तस्मिन ने वावत तिर्णोयं कालकायो बलि कले। हाँ, कि जिस दिन जिस क्षण भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी को त्यागा, कहां से त्यागा, प्रभास क्षेत्र। जब जिस क्षण या जिस दिन भगवान ने जिस पृथ्वी को त्यागा, उसी क्षण कलयुग की शुरुआत हो गई। और इसका अनुभव किसने किया है, महाराज युधिष्ठिर। यदि हम देखें भागवतम के प्रथम स्तर में आता है, महाराज युधिष्ठिर को राजा बनने का कोई लोभ नहीं था, उनको कोई सुंदर स्त्री द्रौपदी की कामना नहीं थी, या बहुत सारा धन ऐश्वर्य नहीं चाहिए था उन्हें। जरूर उन्होंने एक बार प्रार्थना की थी, मुझे ना बहुत सारा धन चाहिए। अभी हम रोज सुबह आज ही गा रहे थे हम, न धनम न चनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये। एक डिवोटी कहते हैं चुपके से, हा धनम हा जनम हा सुंदरी। तो ऐसे हम जब डेले में थे तो कुछ भक्त बड़े मस्ती करते थे, तो चुपके से मंदिर के गेट के पीछे जाकर, जब यह शिक्षा खत्म होता है तो पीछे से बोलते हैं, हा जनम हा जनम हा सुंदरी। डिवोटीज है तो युधिष्ठिर महाराज ने भी हा जनम हा जनम हा सुंदरी बोला था एक बार, हाँ महाभारत में आता है। क्यों बोला था, भगवान कृष्ण की महिमा को स्थापित करने के लिए। धन चाहिए मुझे, ऐसे नहीं कि डिवोटी मीन्स भिखारी, उनके पास कुछ है नहीं, कपड़े नहीं है, नागा बाबा नहीं। डिवोटीज जिनके पास ऐश्वर्य है, लेकिन उस ऐश्वर्य के द्वारा क्या करते हैं, कृष्ण को स्थापित करते हैं। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने कहा, ऐसे कुछ मायावादी होते हैं जो धन को स्पर्श भी नहीं करना चाहते, हाथ भी नहीं लगाना। प्रभुपाद कहते सारा धन मेरे सामने लेके आ जाओ, मैं ऐसा आलिंगन करूंगा उसको, अपने पास रखूंगा कृष्ण की सेवा के लिए। तो वैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, धन चाहिए, राज्य चाहिए, किसके लिए, कृष्ण के लिए। इसलिए तो उन्होंने राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया, राजस्व यज्ञ के द्वारा उन्होंने पूरे पृथ्वी में स्थापित किया कृष्ण की सर्वोच्चता, कृष्ण ही परम पुरुष है, इसको स्थापित करने का उद्देश्य था राजस्व यज्ञ का। ये नहीं कि ये पृथ्वी के बहुत बलशाली राजा बनना चाहते थे, नहीं। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज कलयुग को समझ लेते हैं कि कलयुग शुरू हो गया है, और कलयुग में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो भगवान की पूजा करता है उनके नामों के द्वारा। तो युधिष्ठिर महाराज ने सिंहासन पर बैठे केवल कृष्ण का गुणगान करने के लिए, तो वो कलि का अनुभव करते हैं। युधिष्ठिर महाराज उस समय इंद्रप्रस्थ में थे, दिल्ली में थे। हमें याद आता है कि हम युधिष्ठिर महाराज के राज्य में हैं, कभी पांडवों की याद ही नहीं आती, लेकिन नित्यानंद प्रभु जब दिल्ली आए थे वो रोने लगे। अभी हम दिल्ली जाते परेशान रहते, ट्रैफिक है, कितनी गालियां देते हैं, कभी याद भी करना चाहिए, यही स्थान है द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, यही स्थान है कृष्ण आए थे हाँ द्रौपदी की रक्षा करने के लिए, यही स्थान है वो जब निकले थे अपने रानियों के समय, तो माता कुंती उनके रथ के पास जाकर भगवान की स्तुतियां की थी, यही स्थान। कभी अब दिल्ली में, इसलिए दिल्ली धाम है। हाँ, दिल्ली क्या है, धाम है। हरियाणा, हरियाणा क्या है, जहां से हरि आया करते थे उसको क्या कहते हैं, हरियाणा, तो भगवान हरि यहाँ से गुजरते थे। तो ऐसे दिल्ली में है बहुत सारे कृष्ण के कार्यकलाप है। जब मध्वाचार्य भी दिल्ली आए थे, चैतन्य भागवत में है वृंदावन दास ठाकुर ये शब्द लिखते दिल्ली कि नित्यानंद प्रभु दिल्ली, 500 साल पहले लिखा हुआ है कि दिल्ली आए और नित्यानंद प्रभु आवेश में आ गए। किसका स्मरण करके? पांडवों का, भक्तों का। हम भक्तों का स्मरण करते बिल्कुल गुस्सा हो जाता है, देखता हूं श्री मोदी को। लेकिन यहाँ गदगद हो गए, पांडवों का ये स्थान है। पांडवों से इतना प्रेम करते थे कृष्ण, जिसकी तुलना भागवत में कई सारे अध्याय में की गई है। इसलिए शुकदेव नारद एक बार युधिष्ठिर को कहते भागवत में कि तुम कोई साधारण नहीं हो युधिष्ठिर, आपसे इतना प्रेम करते थे कृष्ण कि आप सबके लिए वो सारथी बनते हैं, दूध बनते हैं, कितनी सारी सेवाएं करते हैं। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जब आए तो वो गदगद हो गए। मध्वाचार्य जब आए तो वो भी अभिभूत हो गया। मध्वाचार्य जब कुरुक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र छोटा सा गांव था, फिर उनके साथ बहुत सारे शिष्य चल रहे थे। मध्वाचार्य ने सोचा इन शिष्यों को कुछ दिखा देता हूं कि यहाँ वास्तव में युद्ध हो गया था। कुरुक्षेत्र में जाते तो हमें पर महसूस नहीं करते कि कोई युद्ध हुआ भी होगा, ये कोई काल्पनिक कथा है। मध्वाचार्य एक स्थान में गए, मिट्टी ऐसी कर दी और अपना हाथ डाल दिया, हाथ डाल के भीम की गदा बाहर निकाल दी उन्होंने। मध्वाचार्य एक वायु पुत्र है, उन्हीं की इंकार्नेशन है, विस्तार है। इतनी बड़ी गदा बाहर निकाली और फिर सारे भक्त उनके शिष्य में चकित हो गए और वो सब देखने लगे और फिर सोचा भी गदा साथ नहीं ले जाएंगे, फिर से बाहर रख दी। और फिर ये सब लोग व्यासदेव को मिलने के लिए बद्रिकाश्रम गए। तो ये सब काल्पनिक कथाएं नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? हृदय में श्रद्धा चाहिए, प्रगाढ़ श्रद्धा। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज हमेशा कृष्ण के बारे में सोचा करते थे और कृष्ण क्या कर रहे हैं, हालचाल पूछने के लिए किसको भेजते थे? किसको? अर्जुन, अर्जुन को भेजते थे। तो अर्जुन को भेजा, अर्जुन को भेजा कि अभी चेक करके आइए द्वारका। 7 महीने बीत गए अर्जुन नहीं आया था द्वारका से। कितने महीने? 7। ऐसे नहीं कि उस समय फोन था या स्काइप में देखते कृष्णा हमसे बात कर लेते स्काइप पर, नहीं। अर्जुन को भेजा और कोई कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन मुश्किल है। अर्जुन गए और वो आ ही नहीं रहे थे, तब इन्होंने नेचर में कुछ परिवर्तन महसूस किया, देखा। तब उनको पता चला कि कृष्णा इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए हैं। ऐसे वो अनुभव करने लगे। उन्होंने देखा कि काल की गति बदल गई है, ऋतुओं का चक्र बदल गया है, सर्वसाधारण लोगों के अंदर लालच, क्रोध, धोखेबाजी ये सब बढ़ गया है और अपनी जीविका कमाने के लिए वो कुछ भी अनुचित साधन को स्वीकार कर रहे हैं। मित्रों के साथ जो संबंध है उनमें कपटता बढ़ रही है, फिर माता पिता पुत्र आदि इन सब में गलत फहमियां हो रही है और एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। पति पत्नियों में विशेष रूप से झगड़ा बढ़ रहा है। उन्होंने देखा कि आज तक ये नहीं हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने सोचा आज ये सब हो रहा है। तो फिर उन्होंने भीम को साथ में बुलाया और कहा देखो मेरी भाई जान, बाया हाथ आंखें आदि फड़क रही है और जो गधे हैं वे मेरी परिक्रमा करके जा रहे हैं, सियारें ऊपर उगते हुए सूर्य को देखकर चिल्ला रही हैं। मायापुर में सुना सियार की आवाज, कभी मायापुर जाइए नींद नहीं आएगी आपको। तो इस प्रकार से सब हो रहा था और कुत्ते आराम से बिल्कुल आकर युधिष्ठिर महाराज के सामने आके जोर जोर से भौंक रहे हैं उनके ऊपर और घोड़े रो रहे हैं, उल्लू कव्वे आई चिल्ला रहे हैं जोर जोर से और आकाश में वज्रपात आदि हो रहा है। ये सारे अशुभ चीजें नजर आ रही थी। गव्वे दूध नहीं दे रही है, बछड़े गवों का स्तनपान नहीं कर रहे हैं, गायें रो रही हैं और जो डेटीज हैं वो भी रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं मंदिरों में और सब कुछ सौंदर्य से विहीन हो गया है। ये सब देखा तो उनका हृदय टूट पड़ा और वो चिंता करने लगे, सोचने लगे कि इस पृथ्वी को किसने छोड़ा है? कृष्ण ने छोड़ा है। और जब ऐसा सोच ही रहे थे बहुत उदास होकर, अभी उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया, उसी क्षण इनका आगमन होता है अर्जुन का। हाँ, तो भक्तों को पता चलता है। तो अर्जुन का जैसे आगमन हुआ तो अर्जुन ने एक विशेष वचन बोले। अर्जुन ने कहा, वंचितो हम महाराज हरिनाम बंद रूपिणा, हे महाराज युधिष्ठिर, मैं वंचित हो गया हूं कि जो मेरे बंधु थे हरि कृष्णा, उनसे मैं दूर हो गया हूं। अभी एव मे अपहृतम तेजो देवी विस्मापना महत्, कहते हैं कि जिनका संग जो मेरे साथ हुआ करते थे, जिनके संग के कारण, जिनकी कृपा के कारण मेरे अंदर ऐसा पराक्रम था कि देवताओं को भी मैं चकित करता था, लेकिन वो सारी चीजें क्या हो गई, मुझसे छीन गई है, क्योंकि मेरे साथ कौन नहीं, अभी कृष्ण नहीं है, और मैं ऐसा हो गया हूं जैसे कि कोई मृत शरीर हो जिसमें आत्मा चला जाए। तो एक भक्त इस प्रकार से अपने जीवन में देखता है, कोई भी उसके अंदर योग्यता है तो उन योग्यताओं के पीछे वो किसको देखता है? कृष्ण को देखता है। इस प्रकार से जब इन्होंने कहा तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि अभी ये पृथ्वी हमारे रहने के योग्य नहीं है। तुरंत उन्होंने भगवान के जो प्रपौत्र थे वज्रनाभ, उसको मथुरा का राजा बनाया क्विकली, और उसी क्षण परीक्षित जो उनके आखिरी वंशज थे उनको यहाँ हस्तिनापुर का राजा बनाया, और बात करना बंद कर दिया, किसी से भी बात नहीं की बिल्कुल, और अपना राजवेश आदि त्याग, बाल खुले छोड़ दिए, डंडा हाथ में लिया, संन्यास डंडा हाथ में लिया युधिष्ठिर महाराज ने, और हिमालय की ओर गमन करने लगे। ये देखा भीम ने भी सब त्यागा, उनके पीछे चलने लगे। फिर किसने देखा? अर्जुन, फिर नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी, सबने सोचा ये उचित स्थान नहीं है, कृष्ण की ओर जाने का समय आया है। तो इस प्रकार से ये सब लोग त्याग करते हैं, अनुभव करते हैं कली के लक्षणों को, और ये जगत से पदार्पण करते हैं। लेकिन जब महाराज परीक्षित शासन काल में आए तो परीक्षित महाराज एक दिन सैर करने के लिए निकल पड़े अपने रथ के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि एक राजा के वेश में एक व्यक्ति गाय और बैल को मार रहा है बुरी तरह से, काले वस्त्र धारण करके। तो समझ गए राजा के वेश में है लेकिन राजा नहीं है, ये कौन है? आसुरी है, कली है साक्षात, क्योंकि हर चाहे वो नदी हो चाहे वो युग हो, उसका एक पर्सनिफाइड एक पर्सन होता है, व्यक्ति होता है। तो उसी प्रकार से ये कली एक व्यक्ति है जो उसका प्रतिनिधित्व करता है। महाराज परीक्षित ने जब अपनी तलवार निकाली उनको मारने के लिए, वो उनके शरण में आता है, उन्होंने कहा मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, आप मुझे निवास करने के लिए स्थान प्रदान करो। तो उन्होंने परीक्षित महाराज ने उनको चार स्थान दिए, द्युतम पानम श्रेया सोना यात्रा धर्म चतुर्विधा, यात्रा धर्म चतुर्विधा, कि जहां जुआ होगा, नशा होगी, अनैतिक संबंध होंगे और मांस आदि होगा, उन स्थानों में आप निवास करो। और एक स्थान भी दिया फाइनली कि जहां बहुत अधिक धन होगा, गोल्ड आदि होगा, वहां भी आपका निवास होगा। तो उनको मारा नहीं, क्यों नहीं मारा? कलियुगों के लोगों पर कृपा करने हेतु इन्होंने उनको मारा नहीं। एक गुण परीक्षित महाराज ने उनके अंदर देखा, कई कई होता है ना, कई हम भक्तों के समाज में भी सोचते हैं कि इनमें बहुत दुर्गुण है, लेकिन एक गुण होता है जिसके कारण उनको सेवा में लगे रखते हैं। तो वैसे ही कलियुग के अंदर एक गुण था, क्या गुण था? कले दोषो निधि राजन अस्ति एकद महत गुणा कीर्तनादेव कृष्णशः मुक्त संघ परम प्रजे। बहुत सारे दुर्गुण है कलियुग में, लेकिन एक गुण है कि कृष्ण के नामों का कीर्तन, जिसके कारण जो परीक्षित महाराज हैं वो उनका वध नहीं करते, और इसी कारण गौड़िया संप्रदाय के आचार्यगण इस कलयुग को विशेष कलयुग कहते हैं। बहुत सारे कलयुग आते और जाते हैं, लेकिन उन कलयुगों में एक चीज नहीं होती, चैतन्य महाप्रभु नहीं होते। क्या नहीं होते? चैतन्य। हजार कलयुग आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, लेकिन उसमें से एक ही कलयुग में कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु। और एक द्वापर युग में कौन आते हैं? कृष्णा। फर्स्ट उस द्वापर में कृष्णा आएंगे, उसके अगला जो कलयुग आएगा उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं, फिक्स है। सोचो कितने फॉर्चुनेट है ब्रह्मा, हर रोज किसको देख रहे हो? कृष्ण को देख रहे हैं, महाप्रभु को भी देख रहे हैं। और महाप्रभु के आंदोलन में हरिदास ठाकुर के रूप में ब्रह्मा क्या करते हैं? अवतरित होते हैं और कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से गौड़िया आचार्यगण कहते हैं ये जो अभी का कलयुग है उसको धन्य कली, ये शब्द यूज करते हैं। धन्य कली का मतलब है जिसमें हरि नाम की प्रमुखता है, हरि नाम का महानता है। तो ऐसे इस कलयुग का लाभ हर एक व्यक्ति को उठाना चाहिए। और इसमें परम साधन क्या है? परम भगवान का जो विशेष नाम है। हाँ, तो इस नाम का उच्चारण करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। श्रद्धा यदि है तो भक्ति का या नाम उच्चारण करने का अधिकारी है। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं श्रद्धा के साथ हमें हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। हाँ, जब हम हरि नाम को बहुत हल्का लेते हैं, ये जो माला है, ये हरि नाम जो बोल रही है, इसी के सहयोग में भगवत धाम जाऊंगा, इससे मैं शुद्ध हो जाऊंगा, विश्वास नहीं है, चलो गुरु ने कहा है तो कर रहे हैं 16 माला। हाँ, लेकिन हमें श्रद्धा के साथ इसका उच्चारण करना चाहिए। जब श्रद्धा के साथ करते हैं एक एक अक्षर का उच्चारण, तो हमें वो शुद्ध करता है और भक्त कृष्ण के समीप जाने लगता है। हाँ, जैसे कि वर्णन आता है विभीषण, हाँ, जब यहाँ भगवान राम से मिलने के लिए आए थे तो अकेले नहीं आए थे, उन्होंने अपने साथ दो चार उनके जो राक्षस संगी है उनको भी लाया था, समुद्र को पार करके। जब ये सब आ गए और विभीषण ने कहा अभी मैं यहाँ ही निवास करता हूँ, आप चले जाइए वापस श्रीलंका, तो उन्होंने कहा कैसे जाएंगे, सागर को पार कौन करेगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको कुछ पुड़िया देता हूँ, कुछ मंत्र देता हूँ। तो एक पत्ता लिया इन्होंने विभीषण ने, और उसके ऊपर भगवान का नाम लिख के उसको ढक दिया और पैक करके उन आसुरों के हाथ में दिया। कहा कि ये आप हाथ में रखिए, ये हाथ में लेकर जाएंगे तो ये जो सागर है वो घुटनों तक ही रहेगा। तो उनको पता है नहीं कि इसके अंदर क्या है। ये सब चलने लगे आसुरगण, देखा इतना विशाल सागर, हाँ, पूरा घुटने तक ही लग रहा है। उन्होंने क्या दिया, हाथ में थोड़ा खोल के देखता हूँ। हाँ, तो उन्होंने हमारे भी क्यूरियोसिटी होती है ना, कोई प्रभु जी आपको कुछ दे दें, कहे कि वहां पहुंचने तक बंद कर दिए, हम पूरा ओपन करके फिर से ढके रख देंगे उसको पढ़ के। तो इन आसुरों ने जब बीच में पहुंच गए सागर के बीच में, अभी हमारी अवस्था वैसी ही है, हम अभी भौतिक जीवन में वापस नहीं जा सकते। हाँ, वापस जाना हमारे लिए मृत्यु के समान है। हाँ, भौतिक जीवन में हम वापस नहीं जा सकते, अभी अंदर आ गए हैं, अभी बस आगे जाते रहो, पीछे नहीं, मुश्किल है, कभी सागर में अभी डूबना पड़ेगा। तो ये जो बीच में पहुंच गए हैं, तो इनके हाथ में वो सोचो बेड बैग थी, वो जो दिया था उन्होंने, बेड बैग तो नहीं थे, इन्होंने खोला, ये क्या है पन्ना, इस पर क्या है, दो शब्द लिखे हुए हैं, क्या लिखा था? राम। क्या लिखा था? राम, भगवान राम का नाम। उन्होंने कहा ये क्या लिखा है, तो उन्होंने उसको फेंक दिया, जैसे फेंक दिया वैसे ही घुटने तो जो सागर था वो कहां तक पहुंच गया, सर के ऊपर चला गया, सारे आसुरों की मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से ये भिड़ बैग है, उनके गुरु विभीषण थे, हमें भी हमारे आध्यात्मिक गुरु ने पत्र दिया है, भिड़ बैग, जो हमें हरि नाम प्रदान किया है, श्रद्धा के साथ एक एक अक्षर का उच्चारण भक्तों के संग में हम नियमित रूप से करते हैं, तो हमें ये जो महान भव सागर है उससे पार ले जा सकता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सीनियर डिवोटी हो या जूनियर डिवोटी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो गौर गोविंद महाराज एक कथा बताते हैं ना, सास और बहू की, इसके सास और बहू, वो सास और बहू बड़ी आपस में अच्छा उनका था गठबंधन, आजकल गठबंधन सही नहीं है, आजकल गठबंधन है वो टीवी देखते हैं स्टार प्लस में सास बहू की कथाएं मिलकर देखते हैं, लेकिन ये सास बहू एक गांव में रहते थे, तो दूसरे गांव में पता चला कि भागवत कथाकार पहुंचे भागवत कथा करने, तो इन दोनों का गठबंधन अच्छा था, उन्होंने कहा चलते हम मिलके क्या सुनेंगे, भागवत की चर्चा कृष्ण कथा सुनेंगे। पहुंच गए तो जो पंडित व्यास आसन पर बैठते थे मधुर मधुर वार्तालाप से सबको सुनाया करते थे कृष्ण कथा, और बीच बीच में बोलते थे आनंद बोलो हरे हरे, बोलिए हरे करे भव पारी, उड़िया में कहा गया है। तो ये उड़िया में वो बोला करते थे पंडित जी कथा, सास बहू बिल्कुल ऐसे आके उत्कंठित होकर सुनना चाहिए, कैसे होकर सुनना चाहिए, उत्कंठ कंठ ऐसा ऊपर हो जाना चाहिए, आंखें ऐसी चातक पक्षी के समान ये हो जाने चाहिए, सुभागवत श्रवण की महिमा है। तो ऐसे जब सुन रहे थे तो सब जा रहा था अंदर अंदर घुस रहा था, एक दिन दो दिन तीन दिन जब इस गांव से उस गांव में जाना होता है तो बीच में छोटा सा पानी का क्या कहेंगे नाला नहीं कहते, नाले में तो गंदी चीजें बहती है, पानी का झरना होगा छोटा सा जो भी है जिसको क्रॉस करना होता था, तो उसमें पानी नहीं था, लेकिन जब ये पहुंच गए सारी पूरा तीन घंटा भागवत कथा का वर्णन हो रहा है, शाम हो गई और बहुत जोरदार बारिश आ गई, पहाड़ से बारिश नीचे बह रही थी, पूरा वो पानी पानी हो गया, गहरा पानी हो गया, अभी कथा खत्म हो गई प्रसाद भी ले लिया और चल के पहुंच गए वो जलाशय के किनारे पानी के पास दोनों, और बहू भी पहुंच गई और सास भी पहुंच गए। अभी समय आ गया कि कौन पहले जाएगा, अभी हम मंदिर में देखते हैं कहां कौन जाना है, तो सीनियर फर्स्ट, क्या कहते हैं सीनियर पहले बाद में जूनियर, वैसे बहू ने कहा माताजी सीनियर आगे बढ़िए, आप पार करिए इस जलाशय को, पार करना में भय के चले जाना, बहुत चतुर थे, सास ने कहा मुझे मरवाने का इसका प्लान है, लेकिन सास की वीकनेस थी, सास बहुत कथाएं तो सुनती थी हाँ, लेकिन हरि नाम में उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी, ये मुंह से तो जोर जोर से बोल रही थी प्रवचन के बीच में, आनंद बोलो हरे 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 करे भव पारे, बड़े जोर जोर से जोश लगा के चिल्ला रही थी प्रवचन के बीच में, ऐसे लग रहा है कि इसी का अकेले का फेत बहुत है, हाँ जी बहू भी बोल रहे थे, लेकिन अभी जब प्रैक्टिकल करने का समय आ गया, आनंद से हरे हरे बोलो पानी को पार करो, था वो कांपने लगी सास, उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकती, अरे बहू सुनते रहे मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए, सीनियर पहले नहीं जूनियर फर्स्ट, तो उसको भेजा बहू को, बहू बहुत सरल हृदय की थी, भक्ति के लिए और हरे नाम का उच्चारण करने में कुछ नहीं चाहिए, सरल हृदय चाहिए, सरल हृदय नहीं है कपट और बहुत सारे उलपटांग चीजों से भरा हुआ हृदय है, हरे नाम भक्तों का संग कृष्ण कथा शास्त्र अध्ययन सेवाएं बहुत जटिल महसूस होती है, कष्टमय प्रतीत होती है, तो ये जो बहू वो जो सरल हृदय की थी और उसका फेथ था जो उसने सुना था, गई और हाथ ऊपर करते हुए बोलने लगी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, तो वो आनंद से हरि हरि का उच्चारण करते हुए निकल पड़े पाने में, क्योंकि उसको फेथ था कि ये भगवान श्री हरि क्या करेंगे मुझे पार करेंगे, देखते देखते वो पहुंच गए, बीच में कहीं कुछ डूबी नहीं रही थी, चल चल के पूरा क्रॉस हो गए, उन्होंने कहा सासुमा सासुमा अभी मैं पहुंच गई हूँ, अभी आपका आगमन, आप भी आइए, सासुमा यहाँ बिल्कुल कांप रहे थे कि मैं नहीं, जब तक पानी खत्म नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो उसका जीवन डूब गया। इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि हरि नाम के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, और श्रद्धा बढ़ती है भक्तों के संग में कृष्ण कथा को श्रवण करने से, और शास्त्रों का भक्तों के संग में अध्ययन करने से। जितने अधिक मात्रा में श्रद्धा होगी उतना ही वो उन्नत भक्त है। श्रद्धा के अलग अलग धरातल है। इस प्रकार से ये वर्ल्ड होलीनेम वीक चल रहा है, जिसमें हम खुद भी लाभ उठाएं, हरि नाम की महिमा को पढ़े, जाने, चर्चा करें और हरि नाम का उच्चारण करें और दूसरों को देने का प्रयास करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन के श्रील प्रभुपाद की। नित्य गौर प्रेमानंद जी।